ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 19। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह। नार्तस्य च गदमुदन्वति मज्जतो नहु। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जसेष्टा। तावद् विभो तनुभृताम् तदुपेक्षितानाम्। बालस्य नेह शरणम् पितरौ नृसिंह। नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नव। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जसेष्टः। तावद् विभो तनुभृताम् त्वदुपेक्षितानाम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम राम। हैदराबाद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, फिर भी एक माइक ठीक करने में देर हो जाती। बालस्य बालक का, न इह इस संसार में, शरणम रक्षक, पितरौ माता पिता, नृसिंह हे नृसिंह, न आर्तस्य रोग से दुखी व्यक्ति का, च और अगदम औषधि, उदनवती समुद्र में, मज्जतः डूबने वाले का, नौ नौका, तप तस्या जो दुखी है उसका, तत् प्रतिविधि दुख मिटाने का उपाय, यह जो इहा इस जगत में, अंजसा सुगमता से, सफलता पूर्वक, इष्टः सिद्ध होता है, तावद तब तक, विभो हे सर्वसमर्थ, तनुभृतां शरीरधारियों का, त्वद आपके द्वारा, उपेक्षिता नाम उपेक्षित, तो श्री प्रह्लाद महाराज भगवान नृसिंह देव से यह कहे कि हे प्रभो, मैं सकल योनियों में, शरीरों में दुख से दग्ध हूं, आप मुझे अपनी भक्ति का उपाय बताइए, दास से जुग दीजिए, इसका उपदेश कीजिए। अंत में उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी लीला कथा को गाता रहूंगा तो आसानी से जीवन की समस्त कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। तो भगवान मानो ये कहते हैं दुख ही तत्तस्य तत्प्रतिकारो लोके दृश्यते किं मद्दास्यादिना। भगवान मानो ये कहें कि प्रहलाद, जो व्यक्ति दुख से दग्ध रहता है उसके दुख का प्रतिकार भी लोक में देखा जाता है। जैसे बच्चे कभी किसी प्रकार से दुखी होते हैं तो उनके रक्षक, उनके सहायक बच्चे के माता पिता होते हैं। माता पिता उसका दुख दूर करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, पढ़ाते हैं और कोई समुद्र की यात्रा कर रहा हो, समुद्र में डूबने की संभावना रहती है, फिर भी सुदृढ़ नौका का आश्रय लेकर वह व्यक्ति पार हो जाता है, डूबता नहीं है। और किसी व्यक्ति को रोग ग्रसा है, रोग ग्रस्त कर लिया है, तो वह व्यक्ति अच्छे डॉक्टर की सहायता से और उत्तम मेडिसिन से ठीक हो जाता है। दुख की दवा है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभो, ये सब तभी काम करते हैं जब आप चाहते हैं। जब आप चाहते हैं कि माता पिता किसी बच्चे की रक्षा करें तब तो ये रक्षा कर पाते हैं, और नहीं तो यदि आप उसकी रक्षा न करें तो माता पिता रक्षा नहीं कर सकते। समुद्र में डूबने वाले को नौका नहीं बचा सकती, और किसी रोगी को कितनी भी औषधि दी जाए, कितनी भी उत्तम दवा दी जाए, लेकिन वो दवा या डॉक्टर उसको नहीं बचा सकते। एक बार एक डॉक्टर के पास हम लोग बैठे थे, एक लड़का विष खा लिया था। उस डॉक्टर के पास जब हम लोग ले गए उस लड़के को, तो लड़का वहां जाकर के ठीक हो गया। तो डॉक्टर बड़े गर्व से बोले कि हरे कृष्ण वाले भी, साधु भी अंततः डॉक्टर की शरण लेते। तो मैं कहा कि नहीं, हरे कृष्ण वाले कभी भी डॉक्टर की शरण नहीं लेते हैं, ये शरण भगवान की लेते हैं। तो डॉक्टर चकित हो गए, वो कहे कि आखिर हमारे शरण में आए ना आप लोग। मैं कहा नहीं, आपकी शरण में नहीं आए हैं, हम भगवान की शरण में थे, हैं और रहेंगे। तो आप लोग यहां क्यों आए? आए भगवान चाहते हैं तो ये रोगी ठीक हो गया, इसका विष खत्म हो गया, नहीं हमारे प्रयास करने से, दवा देने से, उल्टी कराने से ठीक हुआ है। कैसे कहते हैं भगवान ने ठीक किया? मैंने कहा केवल भगवान ठीक किए हैं, आप नहीं ठीक किए। तो बहस कर रहे थे इस तरह से, तो हमने कहा कि आपके औषधालय में, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में कोई रोगी मरे हैं कि नहीं? तो कहते हैं ये तो स्वाभाविक है, मरते तो है ही, तो उनको मारने के लिए आपने क्या दवा दिया? नहीं, मैं तो उनको मारने के लिए दवा नहीं दिया। तो वे कहते हैं उनके कर्म में लिखा था मरना। तो मैं कहा कि बचना भी लिखा रहता है, भगवान चाहते हैं बचना तब बच जाता है, नहीं तो डॉक्टर क्या करेंगे? कितने योग्य डॉक्टर लगे रहते हैं और दवाइयां भी उत्तम श्रेणी की दी जाती हैं, फिर भी रोगी मर जाता है ना। जब भगवान बचाना चाहते हैं तो रोगी बच सकता है, भगवान चाहते हो कि कोई न डूबे समुद्र में तो बच जाता है। नाम होता है नौका का, लेकिन वास्तव में भगवान बचाते हैं। अन्यथा जब वे नहीं चाहें कि ये व्यक्ति नहीं पार हो तो डूब जाते हैं। मनुष्यों के इतिहास में आपने सुना होगा, टाइटैनिक एक जहाज बना इंग्लैंड में, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा, और मनुष्य मान रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी सफलता है, हम इसे बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका की यात्रा करेंगे। और अपने प्रथम प्रस्थान में ही वो जलयान, वो नौका, जहाज डूब गया। और कितने प्रसिद्ध लोग संसार के जीवन खो बैठे। वो चले थे कि हम यात्रा करेंगे, पार कर जाएंगे, बहुत खुशी से गा बजा करके और कई तरह से उत्सव करते हुए लोग जा रहे थे। अटलांटिक महासागर में जब जहाज का अगला सिरा दबने लगा, नीचे होने लगा, तो कितने लोग हाहाकार करने लगे। फंस गया था बहुत बड़े भंवर में, समुद्र में भंवर बहुत बड़ी बड़ी होती, और वैसे जाने लगा, जाते जाते हाहाकार कर रहे हैं, हाय 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 हाय, सब लोग मर गए। तो भगवान नहीं चाहते थे कि वे पार हों, और भगवान यदि चाहते हैं तो टूटी हुई नौका से भी व्यक्ति पार हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है किसी का, यदि आप चाहते हैं तो रक्षा हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। बालस्य मेह शरणम पितरौ नृसिंह, हे नृसिंह देव, हे हमारे स्वामी, ऐसा माना जाता है, देखा जाता है सब जगह व्यवहार में कि माता पिता बालस्य शरणम, बालक के शरण है, रक्षक है। लेकिन कब तक वे रक्षा करते हैं? जब आप चाहते हैं, वास्तविक रक्षक आप हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो माता पिता के रहते हुए भी धनी माता पिता और कुशल व्यक्ति माता पिता, उनके रहते हुए भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि भगवान न चाहे तो माता पिता भी रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि बच्चे के भक्षक हो जाते हैं, उसी को मारने वाले हो जाते हैं। अजिगर्त नाम का एक राजा हुआ, उसने अपने बच्चे को बेच दिया, राजा हरिश्चंद्र के लिए, सुनह से उसका नाम था। बच्चे को बलि देने के लिए बेच दिया गया और पिता ने बेच दिया, ये कथा है। लेकिन वह किसी तरह से मरा नहीं, उसकी बलि नहीं दी गई, बच गया सुना से। तो माता पिता तो रहते ही हैं, धन भी रहता है, कभी कभी देखा जाता है किसी दुख से बच्चे की रक्षा नहीं हो पाती। कितने माता पिता के सामने बच्चे मर जाते हैं, रक्षक नहीं होते। माता को माना जाता है कि रक्षिका है, पिता को माना जाता है रक्षक है, लेकिन आज के युग में तो देखा जाता है कि माता पिता ही अपने गर्भ में आए हुए बच्चे को मार देते हैं, ये रक्षक है? रक्षक नहीं है। तो भगवान चाहते हैं तो रक्षा हो जाती है। कभी कभी अबॉर्शन के लिए दवा खाते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं। ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण जब श्री राम के रूप में लंका पर चढ़ाई किए और युद्ध के मैदान में रावण के साथ उनका युद्ध होने लगा, अंतिम दिन का युद्ध था, 18वें दिन का युद्ध, कुरुक्षेत्र में भी 18 दिन युद्ध हुआ था और लंका के युद्ध भूमि में भी 18 दिन युद्ध हुआ था। अंतिम युद्ध में रावण आया तो रोज आता ही था, उस दिन भगवान उसको मारने का विचार कर लिए, आज इसको मारना है। तो राम के दृढ़ निश्चय को और उनके भयावह धनुष टंकार को सुन करके रावण शिव जी की शरण लिया, ओम नमः शिवाय इत्यादि कह करके भगवान शिव की शरण लिया कि हे प्रभु, आज के लिए हमने आपकी पूजा की थी, अब आज बचाइए, इतने वर्षों तक हमको बचाए, आज बचा लीजिए। तो भगवान शिव रावण की प्रार्थना सुन करके और समाधिस्त होते जा रहे थे, लगता है वो रावण की बात सुन ही नहीं रहे, सुन करके भी हम सुनी कर रहे थे, आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। तब माता पार्वती ने कहा, आपका सेवक खतरे में है, संकट में है, वो प्रार्थना कर रहा है और आप अभी ध्यान कर रहे हैं, आप इसको बचाइए, आज बचाइए किसी तरह से। तो भगवान शिव कहते हैं, मैं न कभी बचाया था और न बचाने की मेरी क्षमता है, बचाने वाला अब तक बचाया था और वही आज मारने के लिए आया है, तो उससे मैं नहीं बचा सकता। आप रक्षा नहीं किए थे रावण की? नहीं नहीं, मैं क्या हूं, मैं कभी रक्षा नहीं कर सकता हूं किसी की भी, रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, भगवान हैं, वे आज आ गए मारने के लिए, अब कौन बचा सकता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जब कृष्ण मारने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कौन बचा सकता है, और यदि कृष्ण बचाना चाहें तो कौन मार सकता है। पांडवों को लक्षा भवन के आग में जलाने का प्रयास किया गया, वे जले नहीं, विष दिया गया भीम को, भीम मरे नहीं, इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, सारे महारथी मार दिए गए लेकिन 5 पांडवों का बाल बंका नहीं हुआ, एक केस भी टेढ़ा नहीं हुआ, उसको बाल बंका गौना कहते हैं। जैव के तेव 5 भाई युद्ध से उबार करके लाए गए भगवान के साथ। अर्जुन को मारने के लिए इतनी बड़ी तैयारियां थी, इतनी तैयारियां, कई महारथी अर्जुन को मारने के लिए स्पेशल अस्त्र रखे थे, लेकिन जिसका रथ केशव हाँक रहे हैं, कृष्ण हाँक रहे हैं, उसको कोई क्या कर सकता है। पूरे युद्ध में अर्जुन को केवल एक दिन पसीना आया था, तो पसीना भी नहीं आया, और युद्ध में कोई बाण अर्जुन पर नहीं लगा, एक बार केवल मुकुट पर एक बाण लगा और मुकुट को गिरा दिया था बस, जबकि अर्जुन पर निशाना लिया गया था उनके गले का, पर भगवान ने ऐसा उपाय किया कि अर्जुन का केवल मुकुट गिरा। भगवान का युद्ध हो रहा था कर्ण के साथ, तो कर्ण के तर्कस में अश्वसेन नाम का एक असुर प्रवेश किया अव्यक्त गति से बाण में, और उसको वरदान था कि जिस पर लगेगा ये बाण है वो मर जाएगा निश्चित। अश्वसेन सर्प था वास्तव में, भगवान इसको जानते थे, अर्जुन को इसका पता नहीं था, अर्जुन तो युद्ध में थे, भगवान इसको देख लिए, कर्ण ने निशाना लगाया अर्जुन के गले पर, वो बाण अमोघ था, लेकिन जैसे ही वो निशाना लगाया अपने धनुष पर बाण का संधान किया और छोड़ा, तैसे ही श्री कृष्ण बहुत जोर से अपने पैर से रथ पर मारे, इतना जोर से मारे कि चारों घोड़े घुटने टेक दिए, भगवान के आघात को सह नहीं पाए, व्यक्ति को भार से दब गए, घुटने टेक दिए, तो अर्जुन का जो गला का निशाना था वहां पर आ गया मुकुट, डाउन हो गए, भगवान ने ऐसे मारा रथ पर, तो अर्जुन को इस तरह बचा लिया। कर्ण यह मानता था कि अर्जुन का निधन निश्चित है, उसका प्राण जाएगा, लेकिन भगवान ने बचा लिया। और ऐसे अनेक अवसरों पर हजारों हजारों अवसरों पर भगवान ने बचा लिया, जबकि विपक्ष मानता था कि अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान बचा लेते थे। तो जब रावण प्रार्थना कर रहा था भगवान शिव से, तो शिव जी ने साफ अपनी पत्नी से, पार्वती से कह दिया कि बचाने वाले या मारने वाले भगवान हैं। तो रावण अब तक बचा इसलिए कि वे बचाना चाहते थे, और अब वे मारना चाहते हैं तो दुनिया मिलकर के भी उस रावण को बचा नहीं सकते, और तुम चुप रहो, करने दो उसको प्रार्थना। इतना कह करके शिव जी हरे कृष्ण जपने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या हो गया? हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि माता पिता भी रक्षा नहीं कर पाते हैं यदि आपके द्वारा कोई उपेक्षित होता है। और आर्तस्य भगवान नहीं चाहते हैं तो उत्तम मैकेनिक के मिस्त्री के होते हुए भी माइक काम हो। हरे कृष्ण। तो श्री प्रहलाद महाराज भगवान से कहते हैं कि आप ही वास्तविक रक्षक हैं, आप ही पोषक हैं, आप ही दुख दूर करने वाले हैं। तो माता पिता भी बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और तप्तस्य आर्तस्य अगदम न शरणम, कोई दुखी व्यक्ति है, रोग से सफर कर रहा है, तो उसको कोई भी औषधि उसका दुख नहीं मिटा सकता, रोग दूर नहीं कर सकता। और उदनवती समुद्र में मज्जतः, समुद्र में डूबने वाले को नौका नहीं बचा सकती, तो वास्तविक बचाने वाले आप हैं। दवाई तभी काम करती है सुगमता से, सफलतापूर्वक, जब भगवान चाहते हैं। और माता पिता भी बच्चे की सेवा सुश्रूषा तभी कर सकते हैं जब भगवान चाहते हैं, और नौका भी तभी पार कर सकती है जब भगवान चाहते हैं कि पार करें। इसीलिए हे प्रभु, आप ही शरण हैं, अतः मैं आपकी शरण ले रहा हूं, आप ही सबके वास्तविक बंधु हैं, हितैषी हैं। और फिर कहते हैं कि कहीं पर किसी तरह से किसी समय किसी के द्वारा कोई रक्षा देखी जाती है, दुख मिटाया हुआ देखा जाता है, तो वास्तव में आप ही दुख मिटाते हैं। उसको अगले श्लोक में कह रहे हैं, जस्मिन जतो जर ही जे न चजस्य जस्मात् जस्मै जथा जदुतजस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितः स्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। जस्मिन, यदि किसी स्थान पर किसी की रक्षा हो रही है, उसका दुख मिटाया जा रहा है, तो स्थान और जतो जस्मात, किसी का दुख मिटाया जा रहा है या रक्षा हो रही है तो किसी स्थान पर, तो वो स्थान भी आप हैं, उपादान कारण तो भगवान है। किसी स्थान पर किसी की रक्षा हो रही है तो स्थान बनाया कौन? जैसे हम लोगों की रक्षा होती है घर में, शीत से बचते हैं, धूप से बचते हैं, कई प्रकार के कष्ट से बच जाते हैं। कोई घर में है, ताला बंद है तो बंद बच जाता है, लेकिन घर है क्या? घर भी भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है, भूमि से दीवार बना है, ईंट से या सीमेंट से, ये सब वस्तुएं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये भवतः स्वरूपम आपका ही रूप है, आप ही रक्षा करते हैं। या मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी की रक्षा कर रहा है, चिकित्सा कर दिया सफलतापूर्वक हो गया, तो डॉक्टर दवा अपने पेट से नहीं निकालता है ना? दवा कैसे बनी है, उसका उपादान कारण क्या है, वो किसी पौधे से या जैसे तैसे वो बना हुआ है, वो भगवान की ही शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। या उसको दूध पिलाया जाता है, कुछ पिलाया जाता है, तो दूध भी भगवान का है, भगवान का स्वरूप है, मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति का उत्पादन है। तो कहीं पर किसी घर में स्थान में जतः किसी चीज से रक्षा हो रही है, जर ही, और किसी समय में जे न किसी के द्वारा, और च किसी के प्रेरित करने पर जस्य किसी के द्वारा जस्मात और जिससे, जस्मई जिसके लिए, जथा जिन प्रकारेण जत जो भी अभीप्सित है, तो यह स्वपर परो वा, या कोई देखा जाता है कि अपर व्यक्ति रक्षा कर रहा है। अपर का अर्थ है न पर, जैसे अर्वाचीन आधुनिक काल माता पिता रक्षक हैं बच्चे को, या पर ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा जी या कोई देवता रक्षा कर रहे हैं। भाव करोति, भाव का अर्थ है कर्ता, कोई कुछ कर रहा है, करोति और विकरोति, कुछ उत्पादन करता है और रूपांतर करता है, विविध करोति, पृथक स्वभाव है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तामसी। संचोदित तब अखिलम भवतः स्वरूपम, जो कुछ भी है वास्तव में आपका रूप है, भगवान के अलावा कुछ है नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान की शक्ति का ही उत्पादन सब कुछ है। कोई व्यक्ति किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता है। जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया जा रहा है, यदि डॉक्टर यह माने कि हमने रक्षा किया और जिस कारण से वो हेवी फीस लेता है, उसके पास जो बुद्धि है वो बुद्धि भी भगवान का ही दिया हुआ है। बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, जिस यंत्र से वो चिकित्सा करता है या शल्य चिकित्सा सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी ही वो अपने दांत से अपने अंगुली से नहीं कर सकता है, कुछ कैंची चाहिए या कुछ काटने के लिए चाहिए, वो किसका है, वो भगवान का दिया हुआ। दवा भी भगवान दिए, स्थान भी भगवान दिए, जहां भी उसकी दवाई होती है। तो नौका से कोई बच जाता है तो नौका है क्या, नौका काठ का बना हुआ है तो वो भी भगवान का उत्पादन है। तो माता पिता बच्चे की सेवा करते, खिलाते पिलाते सब है, लेकिन खिलाते पिलाते क्या है, तो भगवान की ही शक्ति से दूध बनता है माता के हृदय में। भगवान जब चाहते हैं दूध बने तभी बन सकता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो चाहने के बाद भी माता के स्तन में दूध नहीं बन सकता है। बच्चे के लिए माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था पिता नहीं करते हैं, उस बच्चे के पिताजी कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं कि माँ के स्तन में दूध भरा जाए, और माँ भी व्यवस्था नहीं करती है। माँ के स्तन में दूध भरता है तब तक जब तक बच्चा छोटा रहता है, जब तक वो रोटी नहीं खा सकता, भात नहीं खा सकता, दांत नहीं है, तब तक उसके लिए आहार की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, ये माता पिता की व्यवस्था नहीं है, न तो परिवार की और न तो सरकार की, किसी की व्यवस्था नहीं है। किसी स्त्री के स्तन में दूध भर देना, बताइए किस संघ का काम है, कौन कर सकता है ऐसे। तो वो सारी व्यवस्था भी भगवान की है, जो भगवान ही रक्षक हैं, पोषक हैं। तो यहां सात विभक्तियां लगाई गई हैं, स्थान इसको अधिकरण कहते हैं संस्कृत में। कोई भी क्रिया होती है तो उसके लिए स्थान होता है, अधिकरण, सातवीं विभक्ति। और जर ही जिस समय में, यह भी एक अधिकरण ही है। देश में, जिस देश में, जिस समय में, जिन च और जिसके द्वारा, अर्थात यह करण, जिन वस्तुओं से, जिस उपाय से, जस्य जिसकी, जस्मात जिस, उसको अपादान कहते हैं, जस्मय संप्रदानाय जिसके लिए, जथा जो प्रकार है, और जो भी अभिप्सित हो किया जाता है, चाहे वो करे यस्तोपरह परोवा, चाहे अर्वाचीन लोग करें, डॉक्टर करें, माता पिता करें, या भाई करे, कोई करे, अथवा देवताओं के द्वारा होता है कुछ रक्षण, जैसे देवता जल बरसाते हैं, प्रकाश देते हैं, लेकिन वास्तव में देवता का अपना कोई जल नहीं है, सूर्य में अपना कोई प्रकाश नहीं है। प्रभास्मी शशि सूर्यो, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, भगवान कहते हैं। तो परह का अर्थ है श्री ब्रह्मा जी, या सूर्य, या देवता, और अपर का अर्थ है मनुष्य, आज का जन्म हुआ, उसको भाव कहते हैं, सत्ता। करोति, करोति का अर्थ है उत्पादयति, और विकरोति का अर्थ है रूपांतरम करोति। भिन्न भिन्न स्वभाव है लोगों का, भिन्न भिन्न तरह से, भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है कि रक्षा करते हैं, लेकिन वास्तव में तद अखिलम भवतः स्वरूपम, जो कुछ भी है, चाहे करण है, संप्रदान है, अधिकरण है, कोई भी उपाय किया जा रहा है, वास्तव में वो भगवान का स्वरूप है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का उत्पादन है। और जो कर भी रहा है, जीवित देखा जाता है, तो उसमें जो चेतना है वो भी भगवान कृष्ण की है। ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातन। जब तक डॉक्टर जीवित है तभी तक दवाई कर सकता है ना, तो जीवित तो है, तो जीवित तत्व तो क्या है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। तो डॉक्टर में जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है किसी को ठीक करने की, वो अभी भगवान की ही है। क्या मरा हुआ डॉक्टर किसी की दवा चिकित्सा कर सकता है? स्वयं मर गया हो और उसके बाद और पानी चढ़ाए और क्या क्या करे, अब वो क्या करेगा? उसमें जो चेतना है वो भगवान कृष्ण की चेतना है। इस बात को साफ भगवान गीता में खोल करके कहा, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक कुछ बच्चे के लिए करते हैं, मरने पर क्या कर सकते हैं? लेकिन मरने के बाद जो शरीर है वो तो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति का दिया हुआ है। तो इस प्रकार कोई रक्षक नहीं है, रक्षक आप हैं, पालक आप हैं, अतः मैं आपकी शरण ले रहा हूं। माया मन सृजति कर्म मयम बलीय कालेन चोदित गुणान मतेन पुंसः छंदोमयम जदजय अर्पित सोदशारम संसार चक्र मधकोति तरे तदन्य। कोई रक्षक नहीं है क्योंकि सभी संसारी हैं, जन्म मरण में फंसे हुए हैं। जैसे सर्प से ग्रस्त व्यक्ति दूसरे सर्पग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, इसी तरह से इस संसार में कोई भी रक्षक नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक अजगर ग्रसा है, उसको ग्रस लिया है पूरा पूरा, तो वो व्यक्ति दूसरे सर्पग्रस्त व्यक्ति की क्या रक्षा करेगा? नहीं कर सकते। ये काल जो है सर्प की तरह, अजगर की तरह है, धीरे धीरे निगलता है। काल सर्प कहा भी जाता है, कोई मान लीजिए 40 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष, कोई 70, कोई 80, 90, 100, जितने वर्ष का हुआ इसका अर्थ काल रूपी सर्प उसको उतना ग्रस लिया है। सबको ग्रस है। मान लीजिए 10-20 आदमी कहीं पर हो, सबको अजगर अलग अलग ग्रसा है, और उस समय कोई अजगर से ग्रस्त व्यक्ति दूसरे अजगर ग्रस्त व्यक्ति से पूछे हाउ आर यू, तो वो कहेगा ओके आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या ठीक है वो? समाचार पूछने पर सभी कहते हैं ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जब पूरा सिर ग्रस लेगा तब अठीक होंगे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहना चाहिए यही, लेकिन विचार भी करना चाहिए कि हमारी दशा क्या है। हम जिसको अपना रक्षक मानते हैं, माता पिता को, डॉक्टर को या मल्लाह को, वे सभी मृत्यु के पंजे में हैं, संसारी हैं। केवल भगवान ऐसे हैं जो मृत्यु से ग्रस्त नहीं है, अमर हैं, नित्य मुक्त हैं। वे किसी को बचा सकते हैं और कोई बचा ही नहीं सकता। मान लीजिए सांप यहां तक दो आदमी को ग्रसा है, यहां तक अजगर, और ये व्यक्ति पूछ रहा है दूसरे को, उसको भी सांप उसी तरह से ग्रस लिया, ठीक है चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, मैं आपको बचाऊंगा। अरे तो अपने को तो बचाओ ना, उसको बचाओगे? इसी तरह से संसार में कई लोग हैं जो कहते हैं हम बचा लेंगे तुमको, बोलो अपने को तो बचाओ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण छोड़ करके दूसरे की शरण लेता है तो उसका प्रयास वैसा है कि कोई मूर्ख व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़ करके सागर पार करना चाहता है। कोई मान लीजिए कुत्ता है और समुद्र के किनारे 2-3 मीटर तक तैर रहा है समुद्र में, तो कोई समुद्र को पार करने की इच्छा वाला व्यक्ति किसी जहाज का, जलयान का सहारा ना ले और सोचे कि अच्छा गुरु मिल गया हमको, इसकी पूंछ पकड़ करके समुद्र पार करेंगे, क्या वो पार करेगा? ऐसे लोग भगवान की महिमा नहीं गाते हैं, कभी कभी अपनी बड़ाई करवाते हैं खूब, क्यों गुरु जी परमात्मा है, अविनाशी है, ये है वो है, और उसकी पूछ पकड़ते हैं, उससे दीक्षा लेते हैं, वो क्या पार करेगा? वो स्वयं ही मर जाएगा, 2-4 मीटर जाकर के गट से डूब जाएगा, और वही डूबेगा तो उसका शिष्य कैसे जिएगा, कैसे पार होगा? इसमें भागवतम कह रहा है एकमात्र पार करने वाले श्री कृष्ण हैं। जो इस बात को कहे वास्तव में वही गुरु होता है जो भगवान की महिमा का बखान करे। आजकल बहुत से जनता में अधिकांश लोग ऐसे निर्बुद्धि हैं जो ऐसा मान लेते हैं कि किसी मनुष्य की ही शरण लेंगे, इसमें और भगवान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। प्रहलाद महाराज ये सब बातें कह रहे हैं। आज हैदराबाद मंदिर में क्लास हुआ तो उसमें ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि भगवान में और जीव में कितना अंतर है। सश्लोक में बताया बहुत अंतर है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए चुने, भजनीय, कि हमारा इष्ट देव कौन है, कौन हमको दुख से छुड़ाएगा, कौन हमको सब सुख देगा, हमें अजर अमर नित्य जीवन प्रदान करेगा, वो है भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु है। और ये देवी देवता या मनुष्य उसको नहीं सुख दे पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, इसी बात के कह रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभो, यह आपकी बहिरंगा माया शक्ति बहुत प्रबल है और यह लिंग शरीर की सृष्टि करती है, कारण शरीर जो मन प्रधान है, हम लोगों को एक दूसरा शरीर मिला है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और जो मानसिक शरीर होता है, जैसे हम चिंतन कर रहे हैं कि हम यहां रेलवे स्टेशन पर गए हैं या वृंदावन गए हैं, तो वो जो शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वही वास्तविक शरीर है, आत्मा का बंधन। तो आपकी माया शक्ति लिंग शरीर का निर्माण करती है, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ शरीर देती है, पर वास्तव में पुरुष के द्वारा माया प्रेरित होती है। पुरुष का अर्थ है भगवान विष्णु का अंश, कारणोदकशायी पुरुष। कारणोदकशायी पुरुष भगवान श्रीकृष्ण के अंश हैं, तो वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्षोभ पैदा करते हैं। जब तीनों गुण एक समान रहते हैं तो उसमें सृष्टि नहीं होती है, सस्पेंड हो जाती है, और गुणों में विषमता जब होती है तो सृष्टि चालू होती है। तो भगवान कारणोदकशायी अपने दृष्टि मात्र से या संकल्प मात्र से प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करते हैं, कमी बेसी करते हैं, तब यह जीव को शरीर देती है, स्थूल शरीर भी और इसके पहले सूक्ष्म शरीर। जैसे हम लोग देखते हैं फोटो, कैमरे में फोटो बनता है, तो एक फोटो आता है बाद में साफ कराने पर, और उसके पहले ही फोटो बन जाता है जिसको निगेटिव कहते हैं, वही आधार होता है उस फोटो का। यह शरीर तो कुछ भी नहीं है, जो फोटो खींचा जाता है जो निगेटिव है वही मूल है, वो जब तक रहेगा तब तक फोटो बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। अगर फोटो खत्म करना है तो उसको खत्म करना चाहिए, निगेटिव को। ये सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, यही बंधन का कारण है, माया इसकी सृष्टि करती है। यह कर्ममय है, बलीय और छंदोमय है। कर्ममय, कुछ न कुछ भोगों की इच्छा रहती है इस शरीर में, भोगमय है, इच्छामय है, और बहुत बलवान है। चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बलवद्गृहम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, बहुत तेज गति से इधर उधर जाता है, क्षण क्षण में, सेकेंड सेकेंड में, और बलवद, यह बहुत बलवान है, दृढ़म और अपने निर्णय पर दृढ़ रहने वाला है। प्रमाथि, यह इंद्रियों को मत देता है, बलवद दृढ़म, दृढ़ है। इसको कंट्रोल करना मैं वैसे असंभव कठिन मान रहा हूं जैसे आंधी को बस में करना। यदि तूफान आवे, आंधी आवे, तो कोई व्यक्ति अपने गमछा से या धोती से रुकना चाहे कि हम नहीं बहने देंगे इसको, तो क्या कर पाएगा? कभी कभी हमने साधारण हवा में देखा है कि लोग छाता ताने हैं, तब तक हवा का झोंका ही छाता का उड़ा करके खत्म कर देते, और तूफान आवे तो क्या करेगा छाता? छत्र क्या करेगा? धोती गमछा क्या करेगा? मन जब सोच लेता है कि हमको ये करना है, तो फिर उसके वेग को रोकना कठिन है। और आप हमको ध्यान करने को सिखा रहे हैं, कैसे ध्यान करूं? मैं तो इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देख रहा, इतना बलवान है। उसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं, बलवान है, कर्ममय है, वह छंदोमय है। छंद का अर्थ होता है वेद, इसका अर्थ है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है या देवता है, वे वेदोक्त कर्मों को करना चाहते हैं। मन करना भी चाहता है तो यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन आदि करना चाहता है। मन जल्दी स्वीकार नहीं करता है कि भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि कहिए किसी को हरे कृष्ण जपने के लिए, कृष्ण कृष्ण, तो कहता है इतना छोटा सा साधन कैसे भवसागर से पार करेगा? उसके लिए तो कुंड बनाओ, स्वाहा हा हा करेंगे तब संतोष होता है, तब संतोष होता है कि मैंने कुछ किया है ना। कोई बड़ा कठिन काम बताइए तो लोग मान लेते हैं, और भक्ति मार्ग को ये कहकर छोड़ देते हैं ये तो बहुत सुगम है। सुगम है तो कठिन मार्ग क्यों पकड़ रहे हो? आजकल आदमी रास्ता पूछता है कहीं जाने के लिए कि भाई सीधा हाईवे कैसे जाएगा, अच्छा रोड होना चाहिए, बीच में कोई चोर नहीं होना चाहिए लुटने के लिए, कई प्रकार के दिक्कत से मुक्त होना चाहते। किसी को बताया जाए कि ये रास्ता सीधा जाएगा, ये फ्री वे है, कोई सिग्नल भी नहीं है और आप अपनी इच्छा के अनुसार स्पीड से जा सकते हैं, कम देर में पहुंचेंगे, तो कोई नहीं हमको ऐसा मार्ग बताइए जिस पर एक दिन के बदले 10 लाख बरस लग जाए पहुंचने में, और हमारी गाड़ी कई बार भ्रष्ट हो, चक्का भ्रष्ट हो जाए, पंचर हो, ये हो, रास्ते में रात को डाकू भी लूटे हमको, हमको वही रास्ता पसंद है। अरे मूर्ख कहेंगे, सभी कहते हैं भक्ति मार्ग बहुत सरल मार्ग है, बहुत सीधा साधा मार्ग है, फिर भगवान का नाम जपना है, भगवान को प्रणाम करना है, प्रसाद खाना है। दूसरा मार्ग है कि उसमें केवल उपवास ही करना है, मरो खाने बिना, और सिद्धि कुछ नहीं मिलेगी। हमने देखा है अपनी आंख से प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ मेला में एक जगह यज्ञ मंडप बना था और उसमें 108 कुंड बनाए गए थे, 108 कुंड था, बहुत दूर दूर में बड़ा बड़ा बनाया गया था, और एक एक कुंड पर चार चार दंपति बैठे थे, चार चार कपल, और इस आशा से कि अब हम यज्ञ करेंगे तो पूरा भवसागर पार कर जाएंगे, हमको सुख मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा। और ये यज्ञ कराने वाले, तुमको स्वर्ग मिले या न मिले, उनको तो पहले पैसा मिल जाता है, लोग यज्ञ पर बैठते हैं तो पैसा देते हैं, यज्ञ कुंड पर बैठते हैं। सब बैठे हुए थे और एक जगह माइक से मंत्र बोला जा रहा था, उस समय ऐसी दशा थी कि हवा बंद थी और यज्ञ कुंडों से 108 कुंडों से धुआं खूब निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, जहां तहां पंखा फिट किए गए थे, तो लोग बोलते थे, जो पंडित जी बोलते थे स्वाहा, तो वे भी बोलते थे स्वाहा, लेकिन एक एक मिनट पर नाक और आंख पोछते जाते थे, तो वो बोलते थे स्वाहा स्वाहा। वर्तमान में भी कितना कष्ट हो रहा था वो दृश्य हमने आंख से देखा है, उसका फल क्या होगा? फल तो यज्ञ पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फल नहीं होगा। भगवान का नाम तो ऐसा है कि अच्छा से उच्चारण हो या खाते पीते सोते कभी भी ये पूर्ण फल देगा। खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि है। ये है प्रबल मार्ग, है बहुत सुगम लेकिन बहुत सेफ मार्ग है और बहुत स्पीड से जीव जा सकता है। तो मन है इसको स्वीकार जल्दी नहीं करता है, इसको छंदोमयम यहां कहा गया है, वेदोक्त कर्मों में इसकी रुचि होती है, यज्ञ आदि करने में, तीर्थ करने में, तीर्थ करने में दम निकल जाता है, यहां जाओ यहां करो ये करो, अरे माला लेकर के महामंत्र जपो घर में बैठ करके, सबसे बड़ा साधन यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अजया जीव की अविद्या के द्वारा अर्पित है, षोडशारम, षोडश इसके अरे हैं, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, 16 कहे जाते हैं, यद्यपि भगवान की सृष्टि है परंतु जीव भी अपने तरफ से सृष्टि करता है। जितने भी शरीर हैं ये सब भगवान की शक्ति के बनाए हुए हैं, लेकिन इन शरीरों में जीव मम बुद्धि अहम बुद्धि, हम भोक्ता हैं, हम पालक हैं, हम रक्षक हैं, हम स्वामी हैं, ये भावना करता है। इसी को श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है कि यह मिथ्या है। कोई सर्दी हो गई है। श्रीपाद शंकराचार्य जी लिखे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जगत में जीवों की जो धारणा है वह मिथ्या है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम, रस्सी में सर्प बुद्धि होना, तो वास्तव में रस्सी तो है, वो तो सत्य चीज है, लेकिन उसमें जो सर्प की भ्रांति होती है कि ये सर्प है, यह मिथ्या है। शरीर है, पुत्र का शरीर, पत्नी का शरीर, किसी का शरीर, शरीर ठीक है, सत्य है, लेकिन जब ये भावना होती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मैं अधिकारी हूं, मैं भोक्ता हूं, यह मिथ्या है। इस प्रकार की भावना होना, इसको अविद्या कहा गया है, उसको अजा कहते हैं। तो अविद्या के द्वारा जीव को भोगाने के लिए ये 16 चीजें दी गई हैं, 11 इंद्रियां मन से और पंच महाभूत। महाभूत से तात्पर्य है यहां स्थूल भूत नहीं, सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा उसको कहते हैं। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, और जल की तन्मात्रा है स्वाद, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, और वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, और आकाश की तन्मात्रा है शब्द। 11 इंद्रियों की सहायता से जीवात्मा शब्द रूप रस गंध स्पर्श इसी को भोग रहा है, लगा हुआ है। किसी का वो स्पर्श करना चाहता है, जीवात्मा कर रहा है, फंसा हुआ है इस तरह माया के द्वारा। वो समशीतोष्ण वायु का स्पर्श चाहता है, गर्म हवा नहीं चाहता है, बहुत ठंडी हवा नहीं चाहता, तो एसी लगाता है, एसी के द्वारा अनुकूल हवा को स्पर्श करना चाहता है, किसी को देखना चाहता है। बिल्कुल भ्रम में है, माया में है, देखने से कोई सुख नहीं होगा, लेकिन आप तो सुनते ही हैं, चारों तरफ ये बोर्ड लगे हुए हैं कई प्रकार के, देखने के लिए सिनेमा भवन है या क्या क्या देखने के लिए दृश्य, देखना चाहता है, भोगना चाहता है। नेत्र इंद्रिय के द्वारा इन दृश्यों को देखना चाहता है, क्या होगा देखने से, देखने से और गर्त में जाएगा व्यक्ति, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, अनेक प्रकार के संगीत या और बातें, किसी किसी की बात को बहुत कान लगा करके सुनता रहता है। कभी कभी लोग रात रात भर देखते रहते हैं सिनेमा आदि, रात रात भर बात करते रहते हैं। जीव की दशा है, षोडश विकार कहते हैं, पंच तन्मात्रा और इंद्रियों के द्वारा जीव इस तरह से भोगा करता है। नासिका से सूंघता है, कान से सुनता है, और पूरे शरीर से जिसमें स्पर्श इंद्रिया है, मरा गया है शरीर, उसे छूता है, अनुभव करता है, और उसी में हर्ष विषाद का अनुभव करता रहता है। कोई चीज खाता है तो उसमें भी हर्षित होता है या रोता है। हमने देखा है कभी कभी लोग बहुत तीखा मिर्च खा लेते हैं तो रोते रहते हैं, फिर भी खाते रहते हैं, सी सी करते हैं, सी सी। और कोई पूछता है कैसा मिर्च है, बहुत कड़ा है, और फिर भी खाते रहते हैं। तो कुछ चीज खाते हैं दुखी होते हैं, कुछ कठोर चीज गलत चीज रूखा बासी सड़ा हुआ खाते हैं तो दुखी भी होते हैं, तो कोई चीज खा करके बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार की घटना है राधा कुंड की, जाड़ा का दिन था और हम लोग वहां पर वृंदावन के रोड पर राधा कुंड में कोई टेम्पू जो रहे थे कि कोई आएगा तो निकलेंगे, बिल्कुल भोर का समय था और एक व्यक्ति बैठे थे, एक दुकान खुली चाय की, चाय वाला चाय बनाया तो दो लाभ हुआ, जाड़ा में अग्नि तापने का मौका मिला उनको, एक व्यक्ति को आग भी तापने लगे और गरम गरम चाय मिला उनको, तो चाय पीते पीते वो व्यक्ति अपने मित्र से कहता है यार मजा आ गया बहुत बोल लगा कि जैसे उनको साम्राज्य मिल गया हो, यार मजा आ गया, तो आग तापने को मिला और भीतर भी गर्मी चाय के द्वारा गई इतना खुशी से बोले कि यार मजा आ गया। तो इस तरह से कोई कोई दृश्य देखकर, कोई चीज खा करके, कोई चीज छू करके, सुन करके मजा आ जाता है और कभी कभी बहुत दुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव, कोई कोई बात सुन करके कोई कोई लोग दुख का अनुभव करते हैं। मान लीजिए कोई नेता भाषण कर रहा है और उसके विपक्ष के लोग बैठे हों सुनने के लिए, तो उनको तो दुख ही होता है उसके भाषण से, है ना, सब प्रतिपक्ष कोई हो तो उसका दुख होता है, और जो अपने पक्ष के लोग हैं वो लोग खूब खुशी मनाते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरह सुख दुख का अनुभव करता है जीव, शब्द तो है सत्य है, दृश्य भी सत्य है, लेकिन उसमें अनुकूल प्रतिकूल की जो भावना करता है जीव, यह मिथ्या है, यह भ्रम है, यह शरीर है लेकिन हम शरीर नहीं है, हम शरीर में हैं, यह मानना चाहिए। लेकिन जो मानता है कि मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ऐसा हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंग्लैंड का हूं, ये सब मिथ्या है। शरीर भी कोई इंग्लैंड का या भारत का नहीं है, शरीर पांच भौतिक है, पांच तत्वों से बना हुआ है सबका शरीर, और आत्मा भगवान कृष्ण का दास है। पर बीच में जो उपाधियां हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये, ये सब मन करता है। तो यह संसार चक्र का जो रूप है, वास्तव में मन ही संसार चक्र है। तो इस संसार चक्र को हे अज, हे अजन्मा प्रभु, आपके अलावा कौन पार कर सकता है? इसका अर्थ है कि त्वद अन्य, आपसे भिन्न रह करके, आपसे संबंध किए बिना, अर्थात आपका भजन किए बिना कौन पार कर सकता है? कोई नहीं पार कर सकता। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण लेता है, भक्ति करता है, वही पार कर सकता है। संसार चक्र मज कोति तरे त्वदन्य, आपसे पृथक रह करके, आपका भजन किए बिना जन्म मृत्यु के प्रवाह को, चक्र को कौन पार कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल वही करेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंगते। भगवान कहते हैं कि इस संसार को वही पार करेगा दुरते माया को, जो मेरी शरण लेता है। तो भगवान ने पूछा प्रहलाद महाराज से, जब मेरा भी माया के साथ संबंध है, मैं माया पर दृष्टिपात करता हूं, माया के गुणों को कंट्रोल करता हूं, तो माया से संग है ना, फिर तुमसे हमारी क्या विशेषता है, किस माने में मैं श्रेष्ठ हूं? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, स्वत्वं हि नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्ट मदये स्वरसो दसारे निष्पिड्यमान उपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभो, आप माया के गुणों को विजित वश में रखे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब आपके अधीन है, कैसे स्वधामना अपनी चित शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति के द्वारा आप माया के गुणों को अपने वश में रखते हैं। और वास्तव में आप काल हैं, काल आपकी इच्छा है। और जितनी भी वस्तुएं रची जाती हैं, विसर्ज कहते हैं इनको, कार्य और विसर्ग। सृष्टि के जो भी साधन हैं, जो वस्तुएं सृष्ट होती हैं, बनाई जाती हैं, और सृष्टि बनाने में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है, ये सारी आपकी शक्तियां हैं। आप इन शक्तियों को लेकर के जगत की सृष्टि करते हैं। हे प्रभो, इस संसार चक्र में मैं फंसा हूं, जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हूं, और मैं उस तरह से पीसा जा रहा हूं जैसे कोल्हू में इक्षु दंड पीरा जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा गन्ना कैसे पेरा जाता है। पेरा जाता है तो उससे फचफच फचफच रस निकलता है। और बहुत बड़ा बड़ा कोल्हू नहीं देखे होंगे तो शहरों में गन्ना से जूस जो लोग निकालते हैं उसको देखकर समझ सकते। प्रहलाद महाराज कहते हैं निष्पीड्य मानो, मैं पेरा जा रहा हूं, पीसा जा रहा हूं, जैसे गन्ने का, जैसे गन्ना ईख का दंड, ईख का है गन्ना, जैसे गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है, वैसे मैं पेरा जा रहा हूं संसार चक्र में। माम उपकर्ष, मुझे अपने उपकर्ष निकट खींचिए, मैं फंस गया हूं जन्म मृत्यु, आप हमको निकालिए खींचिए। कभी कभी कोल्हू को उल्टा चला करके गन्ने को खींचा जाता है, ये देखा गया है। तो हम लोग तो बैल को हाँके भी हैं और गन्ना धराए भी हैं, तो सारी बात समझ रहे हैं। इसको उपकर्ष आप अपने तरफ खींचिए, ये चक्र हमको जन्म मृत्यु में बहुत दूर ले जा रहा है, खींच रहा है, पड़ा हुआ हूं। उपकर्ष आप इसको खींचिए हमको, मतलब जीव अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान जब कृपा करके किसी को खींचते हैं तब वो संसार चक्र से छूटता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरम दीते, तो हमको खींचिए, आप ईश्वर हैं। हे ईश्वर, षोडश विकार में इस संसार चक्र में फंसा हूं, आप समर्थ हैं, और मैं प्रपन्नम आपके शरण में हूं, आपका दास हूं, हमको खींचिए इससे, हमें अपने धाम में ले चलिए। मैं बार बार जन्म मृत्यु के अधीन नहीं रहना चाहता हूं, दुख। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि बेटा प्रहलाद, लोकपालों का भोग चाहते हो तो मैं दे सकता हूं, इंद्र का जो भोग है या ब्रह्मा जी का भोग है वो सब दे सकता हूं, वो पद और वो सब खाना पीना घूमना अमृत पीना विमान पर चढ़ना, ये सब भोग हैं देवताओं के, जो इस पृथ्वी से लाखों गुना बेटर है, उनको भोगो। और अभी अभी तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई है, तो राज्य सिंहासन खाली है, तो इस राज्य को भोगो, अपने पिता का दिया हुआ धन भोगो। उसे दिया तो नहीं था लेकिन मतलब तो मिलेगा ही ना, बपौती कहते हैं इसको, बाप मर गया तो अपने आप पुत्र का होगा ही, उस पर से मैं दे रहा हूं, तुम्हारे पिता का राज और लोकपालों का भोग मैं दे रहा हूं, इसको भोगो। क्यों विरक्त हो रहे हो, वैराग्य क्यों हो रहा है तुम्हारे मन में, तुम निर्भीड़ क्यों हो रहे हो, जो सुख भोगो। हिरण्यकश्यपु का विशाल राज्य था, देवता सब उसके वश में थे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बस बस बस, मैं देख चुका कि इन भोगों में क्या दम है, ये अति तुच्छ है। दृष्टा माया दिवि विभो अखिलधीष्ण पानाम आयुः श्रियो विभव इच्छति जान जनोयम यस्मत् पितुः कुपितः स विजृम्भित ब्रो विस्फुर्जिते नंगुलिता सतते निरस्त। हे प्रभु, आप हमें भोगों का लालच मत दीजिए। मैं देख चुका सब कि देवताओं को जो भोग प्राप्त है, सुख प्राप्त है, वो तो क्या है? अखिल भीष्म पाना। मैं समस्त लोकपालों के भोग को देख चुका। क्या क्या देखा? उनकी आयु भी देखा, उनका श्री देख चुका हूं, उनका वैभव। जिनकी यह जन इच्छा करता है, मनुष्य हमेशा इच्छा करता रहता है, हमको ये मिले, हमको ये मिले, ये मिले, उनका हमारी लंबी आयु हो और हमें धन प्राप्त हो, ऊंचा पद प्राप्त हो, वैभव प्राप्त हो, सफलता। मैं सब देख लिया हूं, ऐसी हूं 5 वर्ष का बच्चा, 5.5 वर्ष का, इन सब देख चुका, दृष्टा, बस देख लिया। इसमें कोई सुख नहीं है, ये अति तुच्छ है। वो अखिल भीष्म पानाम, अखिल लोकपाला नाम, देख चुका। क्या देख चुका? इनकी आयु को भी देखा, इनके धन को भी देखा, वैभव को देखा। इन्हीं सब की इच्छा करता है जीव। क्या देखा? कि ये अस्मत् पितुः, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब मेरे पिताजी क्रोधित होते थे, क्रोध करके और जब भौहें चलाते थे, तो उनके भौं के इशारे से ही इशारे भोग वैभव पद आदि लुलित हो जाते थे, ध्वस्त हो जाते थे। हमारे पिताजी का मैं देखा हूं, जो क्रोध करके ये सुना हूं, दृष्टा का मतलब है सुनना भी, क्रोध करके आंखें लाल करके और भावों को विस्फुर्जित करते हैं, जब देखते थे तो देवता आदि अपना लोक छोड़कर के भाग जाते थे। अब भोग कौन भोगे? जीने के लाले पड़ जाते थे, कब कहां भागे, कहां जाए, कैसे जिए। इनका पद में देख चुका, का धन देख चुका, और आयु थर थर कांपते थे कि हम कब मर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। हमारे पिताजी के केवल भाव उलटने से, क्रोधमय आंखों से सारा ध्वस्त हो जाता था। देवता भागते थे, छिप जाते थे, और कई वर्षों तक अकेले में रहे, कोई भी भोग नहीं मिला, कोई भी नहीं, चाय भी पीने को नहीं मिला। ये वर्णन है भागवत में, कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। देवता सब दुबले हो गए, एकदम दम निकलने लगा। अंत में ये लोग भगवान से प्रार्थना किए, तब भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा, लेकिन तब मैं मारूंगा हिरण्यकश्यपु को, जब यह मेरे भक्त प्रहलाद को मारने की चेष्टा करेगा, उस समय मैं प्रकट होकर के मार दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु के केवल नाम को सुन करके, दूर से क्रोधमय मुद्रा को सुन करके, सब खान पान, अपना घर द्वार, बीबी बच्चा छोड़ करके एकांत में भाग जाते थे मेरु पर्वत की गुफा में, और दिन गिनते थे, केवल जपते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम राम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हम वो भोग लेकर क्या करेंगे, हमने तो देख लिया उसका क्या कीमत है। देवताओं की आयु वैभव धन आदि सब देख चुका मैं। जब मेरे पिता के क्रोध करने पर ही सब तबाह हो जाते थे, उनको पद सुखी नहीं कर सकता था, उनका धन बेकार हो गया, सब ध्वस्त हो गए, तो मैं वो लेकर क्या करूंगा। अच्छा, आप कहते हैं कि पिता का धन लो, हिरण्यकश्यपु का राज लो। तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध करने पर सब देवता बिल्कुल दुख में पड़ गए थे, हाय हाय कर रहे थे, सुख भोग नहीं भोग रहे थे, और सतुते निरस्त, और हिरण्यकश्यपु हमारा बाप वो भी आपके द्वारा निरस्त खत्म कर दिया गया। जिसके भाव उलटने से, क्रोध करने से देवता सब तबाह हो जाते थे, उनका पोजीशन देख लिया, कोई सुख नहीं है। और जो सबको तबाह कर दिया, सबका मालिक बना था, वो भी आपके द्वारा पेट फाड़ करके यहां फेंक दिया गया। सतुते निरस्त। क्यों हमें ऐसा पद चाहिए, इसमें क्या जीवन सेफ है या सुख है? कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सुख नहीं है। देवता अपने को मानते हैं कि हम सेफ, बिल्कुल सेफ है, सेफ हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु उनको तबाह कर दिया। उससे अच्छा था मर जाना, जितना दुख दिया था हिरण्यकश्यपु उससे वास्तव में मर जाना अच्छा था। सांस लेने में भी डर लगता था इन लोगों को, देवताओं को। भागवत वर्णन करता है किस तरह वे लोग अपना दिन गिन रहे थे कि हाय कब मरेगा, कैसे क्या होगा, ये होगा वो होगा। पितर लोग जब स्तुति किए भगवान की तो वे लोग बोल रहे हैं, और किन्नर लोग कहते हैं प्रभु ये दुष्ट हमसे पालकी ढोआ रहा था, हम लोग कभी पालकी नहीं ढोए, लेकिन इतना भारी खा पी करके इसका शरीर था बलवान, और हम लोगों को बेगार में कहता था पालकी ढो अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो, क्या ऑपोजिशन करेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं देख लिया सब देवताओं को, और हिरण्यकश्यपु के प्रताप को भी देख लिया जो आपके नख से फाड़ कर फेंक दिया गया। हमको भोग नहीं चाहिए, हमको आपकी भक्ति चाहिए। ठीक है तो तुमको चाहिए क्या? प्रहलाद महाराज ने कहा हमको भोग नहीं चाहिए, लोकपालों का, मनुष्यों का तो कहना ही नहीं। बंबई, दिल्ली, हैदराबाद के भोग की क्या कीमत, देवताओं का भी भोग मुझे नहीं चाहिए। यहां तो कोई भोग है नहीं वास्तव में, यहां तो केवल दुख है। पर मूर्खता बस मनुष्य मान रहे हैं कि हम सुखी है, ये है वो है, न कोई आयु है, न धन है, न बहुत बड़ा पद है जो रक्षा हो सके। यहां तो बड़ा से बड़ा जो पद है 5 साल के लिए है, और 5 साल चला दिए तो यही काफी सफलता मानते हैं, है ना? वो भी डर बना रहता है कि हाय हाय 5 साल के बाद क्या होगा, हमारी कुर्सी कहां जाएगी, डर लगा रहता है। क्या सुख मिलेगा, क्या यहां का पद है? इस पृथ्वी पर तो कोई भोग है नहीं, देवताओं का पद लाखों लाख बरस के लिए सुरक्षित रहता है। वो तो अकस्मात हिरण्यकश्यपु ऐसा हो गया तो उसने तबाह कर दिया, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा वे ज्यादा सेफ है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग के विशाल सुख हैं, पृथ्वी से कोटि गुना अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो नाशवान है। इस पृथ्वी पर तो कोई भोग है ही नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जस्मा देवम तस्मात, जब ऐसी दशा है, भोगों में कोई सार नहीं है, तुच्छ है, अतः तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोग्य आयुः श्रियं विभव मैन्द्रियमा विरिञ्चात् नेच्छा निते विल्लिता उरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमाम निज भृत्य पार्श्वम। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम भोग नहीं चाहते हो देवताओं का, या हिरण्यकश्यपु का राज्य नहीं चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो, किसको श्रेष्ठ मानते हो? प्रहलाद महाराज ने स्पष्ट कहा प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, मैं यही चाहता हूं, मेरे जीवन में बस यही इच्छा है। वो अंतिम लाइन में कहते हैं उपनय मान निज भृत्य पार्श्व, मैं शरीरधारियों के आशीष को, वरदान को, भोग को नहीं चाहता हूं, क्योंकि ज्ञ मैं जानकार हूं, मुझे पूरा पता है कि इन भोगों में कोई दम नहीं है, इनका परिपाक, इनका परिणाम क्या होता है, अंततः जीव दुख में ही गिरता है, इसको मैं जानता हूं। इसीलिए मैं लंबी आयु या धन या पद ब्रह्मा जी के भोग तक व्याप्त, ब्रह्मा का भोग सबसे बड़ा है, उनकी आयु सबसे बड़ी है, उनका ज्ञान बहुत बड़ा है, धन बहुत बड़ा है, तो ब्रह्मा के धन को भी, आयु आदि को भी मैं नहीं चाहता हूं, न इच्छामि, क्योंकि अंततः आप कालात्मा हैं, काल के भी नियामक हैं, आपके उरु विक्रम से भयंकर चाल से ये सब ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दुलुलता जो भी पद है धन है सब नष्ट हो जाता है काल के द्वारा। हमारी केवल ये इच्छा है कि आप उपनय माम निजभृत पार्श्वम, अपने सेवकों के पास हमको ले चलिए जहां आपके भक्त रहते हैं, मैं उन भक्तों के बीच में आपकी कथा का श्रवण करूंगा, कीर्तन करूंगा, बस यही इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा नहीं। एक तरफ भोगों की बात की जा रही है, स्वर्गीय भोग या ब्रह्मलोक के भोग, और एक तरफ भक्तों का संग। प्रहलाद महाराज कहते मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे ये सब भोग नहीं चाहिए। और जबकि साधारण पब्लिक इच्छति जान जनोयम अयम जन अज्ञानी जीव जन्म में पड़ा हुआ यही इच्छा करता है कि हमको धन मिले, हमको पद मिले, हमको लंबी आयु मिले, बहुत दिन जिए। जी कर करें क्या, जिए और खूब खाएं भोगे, मुझे ही उदय नहीं कि बहुत दिन जी करके और भगवान की भक्ति करें। अगर व्यक्ति जीना चाहे बहुत दिन तक, बहुत वर्षों तक और भक्ति करे तब तो ठीक है, जीने के लिए भक्ति करना। कुछ लोग तो जीते हैं खाने के लिए, पर अच्छे लोग हैं वो खाते हैं जीने के लिए। और जीते किस लिए हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब, ब्रह्म जिनका नाम है, परमात्मा जिनका नाम है, भगवान जिनको कहते हैं, उनके बारे में सुनना बोलना सोचना यही जीवन का फल है, इसके लिए जीते। लेकिन साधारण लोग जीना चाहते हैं जी करके बहुत दिन भोग भोगे, बहुत दिन खाएं, बहुत दिन पिए, बहुत दिन ऊंचे पद पर रहे, पर काल रहने नहीं देता, काल रहने नहीं देता। अच्छा, ये तो आगे की बात है कि काल मार देता है सबको, सबका शरीर नष्ट कर देता है, भोग सुविधा पद धन सब कुछ नष्ट कर देता है। वर्तमान काल में भी जीव को कोई सुख नहीं है, आगे के श्लोक में बता रहे हैं, कुत्रा शिशः श्रुति सुखा मृगतृष्णी रूपा क्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहः निर्विद्यते नतु जनो जदपीति विद्वान कामानलं मधुलवैः समयं दुरापयि। हे प्रभो, वर्तमान समय में भी किसी को कोई सुख नहीं है। कुत्रा शिशः श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपा, संसार के जो भी सुख है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, चाहे खाने के देखने के सुनने के छूने के जो भी विषय है, ये श्रुति सुखा, केवल सुनने में ये सुख है। जब आदमी सुनता है भोगों के विषय में कई प्रकार की बातें, तो उसे लगता है कि ये हमें प्राप्त होगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा सुख है। लेकिन जब प्राप्त होती है वस्तु तब कोई सुख नहीं होता। जैसे प्रचंड अग्नि में फतिंगा, प्रचंड अग्नि को फतिंगा दूर से देखता है, तो देखता है तो सोचता है कि यह आग की जो लपट है पीत वर्ण का बहुत सुंदर है, इसका मैं आलिंगन करूंगा, इसका स्पर्श करूंगा। तो जब तक वो इस भावना में है कि अग्नि सुखद है तो देखने में सुखद है, लेकिन जब ही फतिंगा पहुंचता है अग्नि के पास उसके पंख जल जाते हैं, छटपटा करके मरने लगता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार के जो भोग हैं, मनुष्य उसके विषय में सुनता है और सुनने पर उसके मन में बड़ा सुख मिलता है, श्रुति सुखा, सुनने भर का सुख है, श्रवण सुखा, श्रुति सुखा। और देखने में क्या है, देखने में केवल मृग तृष्णि रूपा, मृग तृष्णा की तरह है, जैसे मरुभूमि में हरिणों को प्यास लगती है, तो वहां सूरज की किरणों के कारण आगे दिखता है कि जल लहरा रहा है, सरोवर जैसा दिखता है। आप लोगों ने कभी कभी गर्मी के दिन में देखा होगा रोड पर जब कार दूर रहती है तो लगता है कि पानी लगा हुआ है, पानी है, हमने इसको देखा है प्रैक्टिकल। लेकिन जब कार निकट चली जाती है, वो बाहर निकट चला जाता है तो कोई पानी नहीं। तो मृगों को जो मरुभूमि में प्यास से छटपटाते रहते हैं, इधर से जाना इधर जाना, उनको कहीं कहीं सरोवर दिखता है आगे, तो वहां दौड़ कर जाते हैं कि यहां पानी पिएंगे, पर वहां जाने के बाद वो देखते हैं केवल बालू का है, कोई पानी नहीं है। तो वहां से फिर दूसरी जगह पर दिखाई पड़ने लगता है कि वहां सरोवर है, वहां पानी है, तो वहां से दौड़ते हैं उस तप्त बालुका में, इधर से उधर दौड़ना, इधर से उधर दौड़ना, इंडिया से अमेरिका जाना, अमेरिका से यूरोप जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, फिर हैदराबाद से बॉम्बे जाना, बॉम्बे से दिल्ली जाना, इधर उधर तड़पते हुए अंत में मृत्यु के शिकार हुए। कोई सुख नहीं मिलता, वास्तव में कोई सुख नहीं है। देखा जाता है जो वायुयान से चलते हैं तो उनको दूसरे लोग सोचते होंगे ये बड़े सुखी हैं, लेकिन वायुयान से चलने वाले लोग भी उतना ही दुखी हैं। तो थोड़ा भी लेट करने लगता है विमान तो कहते हाँ यार बैलगाड़ी बना लिया, हमारी ड्यूटी छूटेगी, हमारा कर्म छूटेगा, इतना देर हो रहा है, मैं जानता तो इससे नहीं गया होता, ऐसे लोग कहते हैं, है कि नहीं? इसको देखा गया है तो यहां सुख नहीं है, वहां सुख है, इस स्थिति में सुख नहीं है, उसमें सुख है, वो सुखी है, वो सुखी है। तो जैसे मृग प्यास से दौड़ते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है, केवल तड़फड़ाहट, केवल श्रम हाथ मिलता है, इस तरह से लोगों की दशा है। ये केवल देखने भर का सुख है, केवल सुनने भर का सुख है, परिणाम में सुख नहीं है। यदि किसी को भोग भोगने को भी मिले तो वो भोग सुखमय है ही नहीं। इस संसार में सबका अनुभव है स्पर्श सुख, स्त्री आदि का सुख अंततः दुखद है, दुख में परिणत होता है। भगवान गीता में बताते हैं कि जो पहले सुख जैसा प्रतीत हो और अंत में दुख हो वो तामसी सुख है, सुख नहीं है वास्तव में। सात्विक सुख वो है जो पहले कष्ट जैसा मालूम हो, तपस्या करनी पड़े पर अंत में सुख होना चाहिए, वो सात्विक सुख। तो यहां के जो भी भोग हैं किसी भी देश के, किसी भी काल के, चाहे स्पर्श, चाहे दर्शन अथवा श्रवण या घ्राण या स्वाद जीभ से खाना, जो भी है सब अंत में दुख पर्यवसायी है। तो श्रुति सुखा, एक तो भोगों में कोई दम नहीं है, ये दुखमय है, और भोगों को भोगने वाला शरीर क्वेदम कलेवरम असे सुरुजान विरोह, और जिस शरीर से ये भोग भोगे जाते हैं वो शरीर ही समस्त लोगों की जन्मभूमि है। अशेष रुजाम विरोह, अशेष मतलब समस्त, समस्त रुजाम रोगाणाम उद्भव स्थानम विरोह, जहां पर सभी रोग जन्म लेते हैं। मनुष्यों के शरीर में ही सारे रोग जन्म लेते हैं, दीवाल में और पृथ्वी में रोगों का जन्म नहीं होता है। कैंसर किसी दीवाल को थोड़े हो रहा है, या कार को भी नहीं हो रहा है, बस को भी नहीं, मनुष्यों के देह में सारे रोग हो रहे हैं। तो जिस शरीर से ये भोग भोगे जाएंगे वो शरीर ही समस्त रोगों की जन्मभूमि है। क्या भोगेंगे? भोगने की न तो शक्ति है न भोगों में कोई दम है, दोनों चौपट। तो ऐसा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में लिखते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखहिं किन दीना। किसी व्यक्ति को करोड़ रुपए का मिरर दिया जाए दर्पण देखने के लिए, अपना चेहरा, ये बहुत अच्छा मिरर सोने में मढ़ा करके और मिरर दिया जाए, उस व्यक्ति को दिया जाए जो दोनों आंखों से जन्म से ही सूर है, अंधा। तो एक तो अच्छा हाँ मैं उल्टा कह दिया, दर्पण बिल्कुल फूटा हुआ हो या अलकतरा पोता हुआ है, दर्पण में दिखाई नहीं दे सकता है, और आंख भी फूटी है, आंख नहीं है और दर्पण भी बिल्कुल गंदा है, तो क्या कोई देखेगा उसमें। भोग जो है वो केवल दुखमय है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते, भगवान गीता में कहते हैं जो संस्पर्शज भोग है इंद्रियों के, आंख से देखने का, कान से सुनने का, जिह्वा से कुछ चखने का, खाने का, नासिका से सूंघने का और स्पर्श करने का, ये दुख योनयेवते, ये दुख की योनियां हैं, केवल दुख नहीं है, दुख की मां है, और नाना प्रकार के दुख आएंगे इन भोगों को भोगने से। आद्यंतवंत न ते सुरमते बुध, आद्यंतवंत कौन थे न ते सुरमते बुध, हे कुंती नंदन विद्वान आदमी बुद्धिमान आदमी इन भोगों में नहीं रमता है, क्योंकि इनका इनकी शुरुआत होती है और अंत भी हो जाता है। कोई अगर तथाकथित सुख भी है तो बहुत कम देर के लिए, खाने के लिए लोह बस कोई खाए व्यक्ति तो खाते समय तो सुख देगा, लेकिन जब डिसेंटरी हो जाएगा तो अंत में दुख में बदल जाता है, बहुत कम देर तक खाने का सुख है, स्पर्श का सुख बहुत कम देर तक, देखने का सुख भी बहुत कम देर तक, कुछ ही देर के बाद आदमी कहता है ठीक है अब जाओ अब सो, अब हम देखना नहीं चाहते। अपनी पत्नी को भी आदमी कहता है ठीक है अब जाओ बस हो गया, थोड़े देर तक सुख रहता है, इसको आद्यंतवंत भगवान कह रहे हैं, आदि और अंत होता है इसका। सुख वास्तविक वो है जिसका न आदि है न अंत है, सदा सुख सदा से है वो, भगवान के भक्ति का सुख। न तेषु रमते बुध, बुद्धिमान आदमी विद्वान आदमी इन भोगों में नहीं रमता है, वो भक्ति में रमता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भोगों में कोई सुख नहीं है, वो दुख है, और शरीर जो भोगने वाला है वो रोगों की जन्मभूमि, तो क्या भोगेगा। इस समय प्रायः लोग कहते हैं अगर घी दीजिए उनको खाने के लिए तो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर मना किया है। क्यों मना किया है, शरीर में रोग है, भोग कौन भोगता है, शरीर तो भोगने वाला ही बीमार है, क्या भोगेगा। एक तो भोग भोग है नहीं, वो दुख है, पर उसको सुख मान करके कोई भोगे भी तो शरीर में क्षमता नहीं है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, जब घी भी नहीं खा सकता तो क्या भोग भोगेगा, शरीर बिल्कुल अक्षम। कोई कड़ा पदार्थ मिल गया खाने के लिए तो दांत ही नहीं काम करेगा, है ना। कोई कोई ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो कड़े होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अब क्या करें, केवल जीभ से चबाएंगे, दांत खत्म। और रूप कोई क्या देखेगा, कितना दिन देखेगा, कुछ ही वर्ष के बाद आंख पर चश्मा चढ़ जाता है, क्यों, आंख में रोग है ना, इस बात की सूचना दे रहा है, पर व्यक्ति फिर भी चश्मे के सहारे दिखना चाहता है, देखना चाहता है, कितना दिन देखेगा, उस सुख का अंत हो जाता है। सूंघने का छूने का सब सुख का अंत है, सुख एक तो सुख है ही नहीं, तो सुख सुख नहीं है वास्तव, भोग भोग में सुख नहीं है, दुख है, और भोगों को भोगने वाला शरीर समस्त रोगों का जन्म स्थल है। ये भोग भोगने नहीं देंगे, शरीर में रोग रहेगा तो क्या कोई भोगेगा, नहीं भोग सकता। तो भगवान ने कहा कि तो प्रहलाद सभी लोग विरक्त क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों भोगों में ही पड़े रहते हैं,
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं निर्विद्यते न तु जनो जदपित विद्वान। जी प्रत्येक व्यक्ति विद्वान है, विद्वान का अर्थ है जानकार, इसको जानता है कि भोगों में सुख नहीं है और शरीर लोगों की जन्मभूमि है, भोगों में केवल दुख है, इसको सब लोग जानते हैं। यद्यपि विद्वान तदपि न निर्विद्यते, फिर भी निर्वीण नहीं होते हैं, उबते नहीं है संसार से। कि अब तो माला उठा करके भगवान का जप करें, लेकिन नहीं जप करते, भोगों में ही पड़े रहते हैं, भोग भोग नहीं पाते हैं शरीर के रोग के कारण, और ये भी अनुभव होता है कि हाय हाय ये तो दुख है, अरे मैं बेकार भोग भोग है तो दुख है, ये भी अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। और शरीर का एक्सपीरियंस तो है ही कि कुछ भोगा नहीं जाता। वयसी गते कह काम विकार, श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि आयु बीत जाने पर बुढ़ापा में अब कहां काम वासना रहती। व्यक्ति चाहता है स्त्री का सुख लेना भोगना, लेकिन इंद्रिया काम ही नहीं करती, दम ही नहीं रहा, ये शरीर रोगों की जन्मभूमि, इसको जानता है देखता है फिर भी विरक्त नहीं, फिर भी कोई वैराग्य नहीं। क्यों कामानलम मधुलवई समयं दुरापई, अपने काम वासना को शांत करना चाहते, काम का अर्थ है कोई भी वस्तु की भोग की इच्छा, खाने की पीने की देखने की सुनने की सुनने की स्पर्श करने की, इसको भगवान ने भी कहा है आग है यह दुष्पूरेणा नलेन स, ये दुष्पूर है काम। कितना भी जीव भोग भोगे उसकी इच्छा कभी शांत नहीं होगी, शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है कभी, वो भोगने की इच्छा करता ही रहता है। शरीर नहीं सक्षम है तो मन से कुछ चिंतन करता है, भोगता है, कोशिश करता है, ये दुष्पूर अनल है, ऐसी आग है जो कभी पूरा नहीं हो सकती, बल्कि जितना ईंधन डालेंगे उतना ही और भभकेगी आग। जितना जो लोग भोग भोगते हैं उनके भोग की वासना क्षय नहीं होती है, भोग की उत्कंठा बढ़ती जाती है। तो काम एक अनल है, अग्नि है, और उसको व्यक्ति बुझाना चाहता है, कैसे मधु लवई समयं दुरापय, उल्टा बुझाना चाहता है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु गीत, मधु लवई मधु की बिंदुओं से थोड़ा थोड़ा घी से, घी को ही मधु कहते हैं, घी से मधु से उस आग को बुझाना चाहता है। कोई आग धधक रही है और उसको शांत कोई करना चाहे और घी की फूही से सीकर से घी की बूंदों से शांत करना चाहे तो और आग बढ़ती है, और आग बढ़ती है। तो ये उस अग्नि को समन करना चाहता है, अपनी काम वासना को अपनी इच्छा को शांत करना चाहता है, और जबकि वो भी घी की बिंदुएं हैं मधु की बिंदु हैं, वही दुरापई बहुत कठिनाई से इसको मिलती है। भोगने के लिए पैसा चाहिए और सामान चाहिए, कई चीज चाहिए, वो बहुत कठिनाई से इसको मिलती है, दुरापई दुसाध्य है। एक तो बहुत कम मिलता है भोगने की सुविधा और बहुत कठिनाई से मिलता है, तो उसे वो काम की शांति करना चाहता कमानल। तो इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति को कामाग्नि को शांत करने में ही व्यस्त रहना पड़ता है, हमेशा व्यग्र है कि कैसे हमको सुख मिले, कैसे हमारी मन शांत हो, ये हो वो हो, चलो भोग जुटाता है, भोग जुटाना भी बहुत कठिन है, तो इससे तो उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो कहां से विरक्त हो। मान लीजिए आग कहीं लगी हुई है और उसको घी की बिंदुओं से बुझा रहा हूं, तो बुझाने में ही फुर्सत नहीं है, तो फिर वो विरक्त कहां से होगा, कहां से मुख मोड़ेगा। कभी कभी प्रश्न किया जाता है अगर उसको दो चार कंटेनर घी मिल जाए तो आग पर डाल देगा, आग बुझ जाएगी, नहीं, अग्नि इतना ज्यादा है, इतनी इच्छा है भोगों की कि उस प्रचंड जंगल की आग से इसकी उपमा दी जाती है, दावाग्नि निर्वापण, दावाग्नि से, दवाग्नि लगी है, जंगल में आग लगी है, तो आप एक दो ट्रक घी ले जाएंगे तब भी आग नहीं बुझेगी। और वैसे उतना ट्रक घी तो प्राप्त ही नहीं है, मधु लवई वो थोड़ा थोड़ा सीकर, इससे वो अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। कहां से भगवान की भक्ति करे, आपकी भक्ति कैसे करे, जब इधर से मुंह मोड़ेगा तब ना आपका नाम लेगा, आपकी भक्ति करेगा। तो केवल बस कुछ पढ़ता है, देखता है, खाता है, पीता है, ये है वो, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, बस खाने पीने पढ़ने काम करने में समय बीत रहा है, और रात्रि में स्त्री संग आदि में समय बीत जाता है। तो समय कहाँ है, इतना मूर्ख है कि जानते हुए भी कि इसमें कोई सुख नहीं है फिर भी उसी में लगा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिन में काम करने में कुटुंब भरण के लिए और पैसा अर्जन के लिए, और रात में स्त्री प्रसंग में मूर्ख व्यक्ति की आयु कट कट जाती है। रात में समय है तो रात में कुछ घंटा भगवान का जप करना चाहिए ना, बैठ करके माला लेकर के सभी जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो मनुष्य लगा हुआ है किसी तरह से हमको भोग मिले भोग मिले, शरीर रोगी है, भोगों में भी सुख नहीं है, और भोग की सामग्रियां बहुत तुच्छ मिलती छोड़े मिलती हैं। तो आजकल पैसा कमाने में कितनी दिक्कत है, पैसे से भोग बहुत कम मिलते हैं, भोगों में कोई सुख नहीं है, और आज के युग में तो और भोगों में सुख नहीं है, तो शुद्ध भोग मिलते भी नहीं है। लिखते हैं घी का बना हुआ सामान, घी का बना हुआ सब तेल डालडा से बना देते हैं, तो वो भी नहीं सुलभ है, मधु लाओ भी सुलभ नहीं, खाटी भोग मिल नहीं रहा है। अच्छा, किसी स्त्री से कोई प्रेम करता है वो सोचता है कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हमसे सच्चा प्रेम है, ये प्रेम है, और तब तक कुछ दिन के बाद मन फट जाता है, वो किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाती है, अच्छा यही कोई दूसरा गर्लफ्रेंड रख लेता है, इस तरह से भोग छड़े, कोई प्रेम नहीं है। पहले युग में था प्रेम, पत्नी इतना पति परायण होती थी, पति के मरने के साथ मर जाती थी, चिता में जल जाती थी, वो क्या त्याग था, उस प्रेम में तो सुख है, आज कहां प्रेम है किसी का, कोई प्रेम नहीं, इतना ही काफी है कि डिवोर्स नहीं हो रहा है, यही काफी है। और वास्तव में इस युग में उसी को पतिव्रता माना जाएगा जो पति के साथ रह जाए, भले सेवा न करे लेकिन रह जाए अस्थिर, तो वो पतिव्रता ही है। भोग जिसको कहा जाता है, स्त्री पुरुष का जो संबंध है और उनकी क्रियाएं जो है, उसी को इस संसार में काम या भोग कहा जाता है। वैसे किसी भी वस्तु को भोगने की जो इच्छा है उसको काम कहते हैं, लेकिन भोग है नहीं और भोगने वाला शरीर रोगी है, तो इस तरह से जीव दुखी है। तब भगवान पूछते हैं प्रहलाद, तो तुमको कैसे निर्वेद हो गया, तुमको कैसे वैराग्य हो गया, मैं तुमको कह रहा हूं कि भोग भोगो, देवताओं की आयु प्राप्त करो, अप्सराओं को प्राप्त करो, स्वर्ग का राज, ब्रह्मा जी का राज, हिरण्यकश्यपु का सारा राज, फिर भी तुम नहीं ले रहे हो, और ये कह रहे हो कि सब लोग भोगों में पड़े हैं, उनको वैराग्य नहीं है, तुम में वैराग्य कैसे आ गया। प्रहलाद महाराज कहते हैं केवल आपकी कृपा से। इस अगले श्लोक में कहते हैं क्वाहम रजः प्रभवै शतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया जन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। भगवान पूछते हैं कि तुमने कैसे वैराग आ गया, मेरे प्रति भक्ति आ गई, तो कहते हैं केवल आपकी कृपा से। तो हमें कहां योग्यता है, क अहम रजह प्रभव, कहा मेरा जन्म रजोगुण में हुआ है, असुर कुल में हुआ है। यह असुर कुल का विशेषण है। असुर रजोगुणी होते हैं, ये काम करो, पैसा कमाओ, भोगो, ये करो, बस यही रजोगुण का काम। प्रमोधिकेस्मिन, जिस कुल में, जिस असुर कुल में तमोगुण अधिक है, सत्गुण का तो नामो निशान नहीं है, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ, मैं सब तरह से अयोग्य व्यक्ति हूं, मुझमें कहां से भोगों से वैराग हो सकता है। वास्तव में भोगों से वैराग तो जो सत्गुण में है या भगवान का भक्त है उसमें होता है ना। बाकी सब दुनिया के लोग तो भोगों के कोई इकट्ठा करने में और भोगने में पड़े हुए हैं। मेरा जन्म ही रजोगुणी परिवार में हुआ है, और जिस परिवार में तमोगुण अधिक है, सुरेतर कुल है, देवता से भिन्न असुर कुल में जात मैं जन्म लिया हूं, मैं अपने तरफ देखता हूं मुझमें कैसे वैराग्य हो गया, कैसे आपके चरणों में भक्ति हुई, मैं सब तरह से अयोग्य हूं, कहां मैं अयोग्य अनक्वालिफाइड व्यक्ति और कहां आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा दीनहीन पर ही बरसती है, मैं योग्य नहीं था लेकिन आपने कृपा किया हम पर, आपकी कृपा की क्या पहचान है, कैसे माना जाएगा कि आप हम पर कृपा किए हैं। भगवान मानो पूछे, तुम कैसे मानते हो कि तुम पर हमारी कृपा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, अभी अभी आपने अपना पद्म करह, अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखा, यह प्रसाद दिया हमको, जो प्रसाद ब्रह्मा को भी सुलभ नहीं हुआ। आपने ब्रह्मा जी के सिर पर कभी अपना हाथ नहीं रखा है, न तो भवस्य और न तो शिव जी के मस्तक पर आपने अपना हाथ रखा। नवई रमाया, आप रमा जी का, श्री जी का पाणी ग्रहण किए हैं, हाथ पकड़े हैं, लेकिन श्री के सिर पर कभी हाथ नहीं रखे। और वही कर कमल आप हमारे सिर पर रखे, भगवान ने उठाया था प्रहलाद को और कर कमल रखा था, ये कथा आई थी शुरू दिन, यह आपकी कृपा है। पद्म करह, पद्म का अर्थ है कमल, आपका हाथ कमल जैसा सुशीतल है, सारा संताप हर लेता है, सारी जीवन का सारा जलन दूर हो गया, मैं सुखी हो गया। आप जिसके सिर पर अपना बरद हस्त रख देते हैं, वह जन्म मृत्यु के प्रवाह से, संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, और उस व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। ये प्रसाद का ही अर्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ कि आपकी कृपा मिले, आपका करकमल उस व्यक्ति के सिर पर जाए, बहुत बड़ा प्रसाद है। तो आपने हमको वो प्रसाद दिया, हमको अपना बनाया, अपना दास बनाया, जो हस्त कमल आप अपने पुत्र ब्रह्मा जी के मस्तक पर भी नहीं रखे, और अपने ही स्वरूप भगवान शिव के भी मस्तक पर नहीं रखे, और अपनी अर्धांगिनी परम प्रिया लक्ष्मी के सिर पर भी नहीं रखे, वह हस्त कमल आप हमारे सिर पर रखे, अहो आपकी कृपा अद्भुत है। वास्तव में आप दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, मैं तो सब तरह से हीन हूं, मुझमें कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन आपकी कृपा इतनी बलवान है, उसने मुझको ये सौभाग्य दिया। आप कृपा करके हमारे मस्तक पर हाथ रखें, हमारी योग्यता देख करके नहीं, यह कह रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपामय हैं, आपकी कृपा से ही मुझमें वैराग्य आया है, आपकी कृपा से ही आपके चरणों में मेरा झुकाव हुआ है, भोगों में रुचि नहीं है, केवल आपकी दया से। तो हमें कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई या कोई साधना अनुष्ठान नहीं है कि मैं भोगों से बचूं, भोगों से मुझे नफरत है, ये आपकी कृपा का फल है। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, जो प्रसाद आपने लक्ष्मी जी को नहीं दिया, ब्रह्मा जी को नहीं दिया और भगवान शिव को नहीं दिया। शिव जी साक्षात कृष्ण के स्वरूप ही हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं, उन पर भी आपने कृपा नहीं किया, और जो आपके डायरेक्ट नाभि कमल से जन्म लिए हैं, आपके पुत्र और शिष्य दोनों हैं ब्रह्मा जी, उनके भी मस्तक पर नहीं रखे और अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के मस्तक पर भी हाथ नहीं रखे। और मैं सुवेतर कुल में, असुर कुल में जन्म लिया हूं, मेरा जन्म रजोगुणी जन्म है और तमोगुणी वंश में जन्म लिया, मैं सब तरह से हीन, परंतु फिर भी आपने कृपा करके मेरे सिर पर हाथ रखा, आपको अनंत धन्यवाद है, आप दयामय हैं, आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, तो आपकी कृपा से मुझमें कोई भी गुण आया है, हमारा अपना कोई गुण नहीं। और इस तरह से श्री प्रहलाद महाराज आगे भी भगवान की स्तुति करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधा गोपीनाथ।